हमारी परम शांति मैं यहाँ महसूस करता हूँ। आप चैन से बैठे, दिलों में चैन है या नहीं है उसका तो भगवान ही जाने, शायद आप कुछ जानते। मैं नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ इतनी शांति में महसूस करता हूँ, इसके माने यह है कि मेरे दिल में कुछ चैन है। एक जमाना था शायद 15 साल में, जब मैं दिल्ली में आया था, तो उस जमाने में मैं आचार्य रुद्र, जो सेंट स्टीवंस कॉलेज के आचार्य थे, वो तो हिंदुस्तानी थे, बंगाल के थे, लेकिन वो सुस्त ख्रिस्ती थे, लेकिन जैसे ख्रिस्ती थे ऐसे ही सुस्त हिंदुस्तानी थे। उनको इसका फख्र नहीं था कि वो बंगाल के हैं, फख्र था कि वो सारे हिंदुस्तान के हैं। और वो ख्रिस्त के जितने कानून थे, संयम था, उसका वो पूरा पालन करते थे। मैं तो उनको पहचानता नहीं था, लेकिन दीनबंधु एंड्रूस को तो मर गए, रुद्र भी मर गए, वो उनको पहचानते थे और श्रद्धानंद जी पहचानते थे। श्रद्धानंद जी का दर्शन मैंने कभी, जब मैं अफ्रीका से आया, उससे पहले नहीं किया था, लेकिन उनके साथ मेरा पत्र व्यवहार तो दक्षिण अफ्रीका से चलता था, इसलिए खतों किताबत से मैं उनको पहचानता था, लेकिन इतना भी आचार्य रुद्र के साथ मेरा संबंध नहीं था। लेकिन कड़ी हम दोनों के बीच में दो व्यक्तियां थी, श्रद्धानंद जी और दीनबंधु एंड्रूस। वहाँ उन्हीं के मार्फत मैं मरहूम हकीम साहब को मिला और डॉक्टर अंसारी को, और उन्होंने मुझको कहा कि हमारे दिल्ली के बादशाह वो अंग्रेज नहीं है, लेकिन हमारे दिल्ली के बादशाह तो ये हकीम साहब हैं। डॉक्टर अंसारी तो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, बहुत बड़े सर्जन थे, वैद्य थे, अंग्रेजी सब टैलेंट थे, वो तो भी हकीम साहेब के मातहत रहते हैं, उनके लिए इतनी कदर थी। वो भी सुस्त मुस्लिम थे, लेकिन वो तो बहुत ही बड़े विद्वान थे, हकीम थे, यूनानी हकीम थे, लेकिन आयुर्वेद का भी उन्होंने कुछ तो अभ्यास किया था। उनके वहाँ हजारों मुसलमान तो आते थे, उनका घर भी मैंने देखा है, देखा था उस वक्त, और उनके वहाँ हजारों गरीब हिंदू भी आते थे, साहूकार, धनिक मुसलमान, धनिक हिंदू, वो तो उनके पास आते ही थे, एक दिन का 1,000 रुपया उनको देते थे, उनके लिए कोई उनको दरकार थी ऐसा नहीं है, जहाँ तक मैं हकीम साहब को पहचानता था। लेकिन वो मिस्कुनों के खातर तो उनको पैसे चाहिए, और वो तो बादशाह जैसे थे, आखिर में उनके उनके बाप दादा तो वो चीन में रहते थे, चीन के मुसलमान थे, लेकिन बड़े शरीफ थे। तब उन्होंने ये कहा, हिंदू लोग जितने मेरे पास आए उन्होंने भी यही कहा कि आपका आपका सरदार यहाँ कौन है, तो श्रद्धानंद जी नहीं, श्रद्धानंद जी का तो यहाँ उनकी कोठी भी पड़ी थी, बड़ा काम करते थे, लेकिन नहीं, दिल्ली के सरदार वो हकीम साहब थे। क्यों थे? क्यों कि उन्होंने हिंदू मुसलमान सब की सेवा ही की खिदमत की। तो वो तो 15 साल की बात मैंने की आपको, लेकिन बाद में तो उनके साथ मेरा ताल्लुक बहुत बढ़ गया और बहुत उनको पहचाना, डॉक्टर अंसारी को पहचाना। डॉक्टर अंसारी के घर में तो मैं काफ़ी दिनों तक रहा। वो उनके लड़के उस जोहरा को मैं पहचानता, उनका दामाद शौकत खान उसको मैं पहचानता। वो सब भले हैं, आज भी पड़े हैं, लेकिन मेरा दिल में रंज क्यों है कि उनको आज डर लग गया है। होना नहीं चाहिए। किसका डर लगता है कि हाँ कोई हिंदू उनको भी मारे तो? उनका घर में तो वो रहते नहीं है, लेकिन वो होटल में जाकर रहते हैं। इत्तेफाक से बच गए हैं, क्योंकि उनका दरवान था वो हिंदू था, तो उन्होंने लोग जो आए थे उनको भगा दिए। वो तो मैंने थोड़े दिनों की बात की। तो ऐसे क्यों हम हैं, ऐसे पागल हिंदू क्यों बने, सिख क्यों बने के जिसका डर उनको लगे? तो आप कह सकते हैं, कहते हैं मुझको, काफी हिंदू कहते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लाल आंख करते हैं कि तुम तो पढ़े हैं, वहाँ बंगाल में पढ़े हैं, बिहार में पढ़े रहते हैं, आओ पंजाब में देखो तो सही, पंजाब के में हिंदुओं की क्या हाल मुसलमानों ने किया है, सिखों के क्या हाल किए, लड़कियों की क्या हाल किए। मैं कोई नहीं समझता हूँ, ऐसा तो है ही नहीं, लेकिन मैं तो उन दोनों चीज़ों को साथ साथ रखना चाहता हूँ कि वो तो है, किया है। तो मेरे भाई एक पागल बने और सबको मार डाले तो मैं भी उनके सामने पागल बनूँ क्या, और मैं गुस्सा करूँ, कैसे हो सकता है? तो आज मैं चला गया। आपको मैंने सुनाया तो है कि हिंदू आश्रितों के कैंपों में चला गया, तो वहाँ बस सब तो नहीं, काफ़ी आंखों में मोहब्बत भरी थी, लेकिन कई आंखों में बस गुस्सा भी भरा था। लड़के नौजवान कहेंगे मुझको सुना सकते हैं, गुस्सा भी मुझ पर कर सकते हैं, किया। दूसरे थे हिंदू थे, सिख थे, उन्होंने उनको टाला, शांत रखा कि तो वो तो आया है, तुम्हारी भी सेवा करेगा, मुसलमान की सेवा करेगा, उसके पास तो सब एक हैं, वो उसके पास ऐसा नहीं है कि वो हिंदू है तो इसलिए हिंदू का ही देखेगा और मुसलमानों का नहीं। वो तो कहता है कि मैं हिंदू हूँ और अच्छा सच्चा हिंदू हूँ, परहेजगार हिंदू हूँ, इसलिए मैं मुसलमान भी हूँ, मैं तो पारसी भी हूँ, ख्रिस्ती भी हूँ, यहूदी भी हूँ, मेरे सामने तो सब एक ही वृक्ष की डालियाँ हैं, तो मैं किस डाली को पसंद करूँ और किसको मैं छोड़ दूँ, किसकी पत्तियाँ मैं ले लूँ और किसके पत्तियाँ मैं छोड़ दूँ, तो वो सब एक हैं, ऐसे मैं बना हूँ उसका क्या करूँ। तो वो लोग उनको समझाते, कुछ शांत हुए। आज मैं वहाँ पुराने क्या फोर्ट में किले में गया, तो पुराने किले में तो मैंने हजारों मुसलमानों को देखा, और वो दूसरी गाड़ियाँ आ रही थी जिसमें वो भरे भरे आते थे, वो सब आश्रित, और किले में उनको रहना पड़े। किसके डर से? आपके डर से, मेरे डर से? तो आप तो नहीं डराते हैं, मैं जानता हूँ, मैं नहीं डराता हूँ, लेकिन मेरा भाई डराता है, जो अपने को हिंदू मानता है, जो अपने को सिख मानता है, वो डरावे, और मैंने डराया, आपने डराया, तो मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होती। और वो क्यों वहाँ पड़े हैं किले में, कि वहाँ से पीछे वो भागे पाकिस्तान में जाए? पाकिस्तान में स्वर्ग है और यहाँ नरक है क्या? अगर ऐसा है तो उस नरक अगर उनके लिए है तो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी होना चाहिए, हम इस नरक में क्यों पड़े? लेकिन मैं जानता हूँ कि न पाकिस्तान नरक है, न हिंदुस्तान नरक है। हम बना सकते हैं पाकिस्तान को मुसलमान, क्योंकि बड़ी तादाद में, वो उनको नरक बना सकते हैं। हम क्योंकि हिंदू बड़ी तादाद में हैं तो यहाँ उसको हिंदुस्तान को नरक बना दे। जब दोनों नरक जैसे बन गए तो पीछे उसमें दुनिया तो नहीं रह सकती है, इंसान तो नहीं रह सकता है, तो पीछे हमारे हमारे नसीब में तो गुलामी ही लिखी है क्या? ये चीज़ मुझको खा जाती है, सारा दिन भर उसी चीज़ को मैं सुन रहा हूँ और सुनकर मेरा हृदय तो कांप उठता है कि इसमें इस हालत में मैं किस हिंदू को समझाऊंगा, किस सिख को समझाऊंगा, किस मुसलमान को समझाऊंगा। मैंने तो कहा काफी मुसलमान गुस्से में आ जाते थे, दूसरे मुसलमान उनको रोकते थे, वो भी मैंने देखा, उनके दिलों में मोहब्बत थी, वो समझ गए जो रोकते थे वो कि ये बूढ़ा आया है वो तो हमारी खिदमत करने के लिए आया है, हमारे आंसू है उसको पूछने के लिए आया है, हम भूखों हैं तो देखने के लिए आया है कि उनको रोटी का टुकड़ा कहीं से भी मिल सके तो पहुंचाओ, उनको पानी नहीं मिलता है तो उसको पानी पहुंचाओ, मुझे पता नहीं है कि वहाँ पानी मिलता है कि रोटी मिलती है कि नहीं, किसी ने कहा तो सही कि हमारे पास रोटी भी नहीं है पानी भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि मैं तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए गया, कोई मैं शौक से थोड़ा गया था, मुझको मजे वहाँ थोड़ी थी, तो उन लोगों ने उसको बड़ी मोहब्बत से सुनाया तो मुझको अच्छा तो लगा, लेकिन वो क्यों उसको गुस्सा होता है घर बार छोड़ना, वो तो किसी को पसंद नहीं आएगा, जैसे वो आश्रित हिंदू पर हैं उनको कैसे पसंद आ सकता है कि अपनी जायदाद छोड़ी, घर छोड़ा, कितने मर गए और पीछे यहाँ जिंदा आए और पड़े हैं, उससे क्या उनको दिलचस्पी आ सकती है, और पीछे यहाँ खाना कहाँ है, पीना कहाँ है, घर कहाँ पड़ा है, कहीं भी पड़े रहते हैं तो वो कोई अच्छी बात नहीं, सब के लिए शर्म की बात है। तो मैं तो उनको भी समझाता था और आप लोगों के मार्फत दूसरे जिसको मेरी आवाज़ पहुँच सके उनको भी पहुँचाना चाहता हूँ कि आपकी दिल्ली बड़ी आलीशान नगरी जिसमें ऐसा कहते हैं वो जो पुराना किला है वो तो इंद्रप्रस्थ कहा जाता है, कहते हैं हमको कि वो तो महाभारत काल में पांडव उपांडव यहाँ वहाँ रहते थे पुराने किले में, और वहाँ सब जो चीज़ें बनी वो पुराने किले में बनी, वो आपकी दिल्ली, उसको इंद्रप्रस्थ कहो उसको दिल्ली कहो, वो जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों इकट्ठे होकर पले, पीछे कहो कि वो तो मुगल का था उससे हमें क्या, लेकिन बात तो ये है कि उन्होंने कुछ भी किया लेकिन वो तो हिंदुस्तान के बने, आज मुगल बादशाह के कोई भी हैं तो नहीं कह सकते हैं कि हम तो वहाँ से दूर से आए तो वहाँ के हमारे क्या है, उनके सब कुछ यहाँ दिल्ली में रहा और दिल्ली में बने, उसी में से अंसारी बने, उसी में से हकीम साहब, उसी में से कई हिंदू भी बने, हिंदुओं ने भी काफ़ी उनके नीचे नौकरी की, ऐसी आपकी दिल्ली उसमें हिंदू मुसलमान सब आराम से पढ़े लेते थे, बार दफा लड़ लेते थे, वो तो दो दिन के लड़े और पीछे एक बन गए, जिसमें एक दफा मैं जानता हूँ कि कोई कातिल ने खूनी आदमी ने हमारे श्रद्धानंद जी का खून भी किया, लेकिन वही श्रद्धानंद जी वो दिल्ली की जुमा मस्जिद में मुसलमान मोहब्बत से उनको ले गए और वहाँ उन्होंने बहस सुनाई, ये आपकी दिल्ली है। उसमें हम देखो हम तो पीछे भले पंजाब से आए, उन्होंने किया आपने कुछ नहीं किया, लेकिन वो सब वो बाहर के थोड़े हैं, पंजाब के वो भी हमारे ही पड़े हैं, सिख है तो भी हमारे हैं, हिंदू है तो भी हमारे हैं, उनका डर क्यों, वो क्यों इस तरह से दिल्ली को आज आज नामोशी में डाले और पीछे पीछे तो यहाँ की आपकी हुकूमत को नामोशी में डाले। अभी वो सरदार ऊंचा सर रख के चलने वाला, आज मैं आपको कहता हूँ कि उसका सर नीचा हो गया, वो जवाहरलाल वो हवा में उड़ने वाला आदमी किसी की परवाह नहीं करेगा, आज वो लाचार बन के बैठ गया है, क्यों लाचार बना, क्यों कि हमने उनको लाचार बनाया, अगर ऐसा ही रहता कि वो पश्चिमी पंजाब के मुस्लिम है, वो ही दीवाने बन गए, वो भी खतरनाक बात है, वो नहीं बनना चाहिए उसको। लेकिन एक बने तो उसकी दवा तो हो सकती है, लेकिन सब बने तो कौन दवा करेगा? वो कोई जवाहरलाल, वो थोड़ा ईश्वर है, वो सरदार, वो ईश्वर थोड़े, दूसरे उनके साथ जो मंत्री पड़े हैं वो कोई ईश्वर तो नहीं है, उनके पास ईश्वरी ताकत नहीं है। जो जो बाहर की ताकत, दुनियावी ताकत, वो भी कहाँ उनके पास है? आपका आर्मी वो आपका नहीं है, वो तो जब बनेगा आपका तब कहा जाता है कि वो हमारा आर्मी है। हमारा वो नौकर पड़े, सिविल सर्विस में जो पड़े थे वो हमारे हैं, लेकिन आज अगर वो न रहे तो उसके पास, उसके पीछे कोई दूसरी सल्तनत है सही जवाहरलाल के पीछ के पाछे, या तो सरदार के, उसके पीछे जो सल्तनत पड़ी हो तो आप लोग हैं, मैं हूँ, दिल्ली के जो हिंदू पड़े हैं, सिख पड़े हैं, वो हैं, होने तो चाहिए मुसलमान भी, तो वो उनकी सल्तनत है। वो सल्तनत अगर बिगड़े तो वो कहाँ जाए, किस जगह से उनके पास जो जो ताकत होनी चाहिए अवे, वो ताकत तो उनको मिल नहीं सकती है। ऐसे हम बने, इसलिए मैं तो बस यही वो लोगों को तो कहता ही हूँ, जो आते हैं उनको भी सुनाता हूँ। काफ़ी हिंदू आ गए, काफ़ी मुसलमान आ गए, उनसे मैंने काफ़ी बहस आज की, लेकिन आखिर में मेरी आह तो ईश्वर के पास चली जाती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुझको यहाँ से तू उठा ले तो मुझको अच्छा लगेगा, और नहीं तो पीछे दिल्ली जो आज दीवाना बन गया है ऐसा लगता है, उसको तुम अच्छा कर ले जैसे पहले थे। और किसी हिंदू के दिल में या तो सिख के दिल में वो मुसलमानों के लिए गुस्सा न हो, उसको सुनाते हैं कि लेकिन मुसलमान वो तो कहते हैं अंग्रेजी में ना फिफ्थ कॉलमनिस्ट, उसके मानिए कि बेवफा, इस यहाँ की हुकूमत है उसके बेवफा बने, 4.5 करोड़ मुसलमान पड़े, 4.5 करोड़ मुसलमान अगर बेवफा बनते हैं तो उसमें खोएगा कौन? उनको गमाना है, और वो इस्लाम को खड्डे में डालेंगे, लेकिन हिंदू को और सिख को वो खड्डे में नहीं डाल सकते हैं। 4.5 करोड़ मुसलमान अगर ऐसे ऐसे ऐसी बदगुमानी करे तो उनको खड्डे में पड़ना है। और पीछे क्या करेंगे, 4.5 करोड़ मुसलमान को आप ताराज करेंगे, और ताराज नहीं होना चाहते हैं इसलिए वो पाकिस्तान में जाए, कहाँ जाए, क्यों जाए, किसकी शर्म? मैं आपको कहता हूँ कि वो आपकी शर्म है और मेरी शर्म है, कम से कम मैं वो दृश्य देखना नहीं चाहता हूँ मेरी आंखों से। मैं तो ईश्वर को ये कहूँगा कि तुम उसको यहाँ से उठा ले, काफ़ी तुमने मुझको जिंदा रखा है, कोई 78 बरस 79 बरस कोई कम है? मुझको पूरा संतोष है, जो मेरे से बन सकती थी वो मैंने सेवा कर ली, लेकिन अगर नहीं मुझको तो जिंदा रखना चाहता है तो मेरे पास से और भी कुछ काम ले ऐसा कि जिससे मेरा आत्मा को भी संतोष तो पहुँचे कि हाँ तू तो दोनों का दोस्त है, सबका दोस्त है, और सबका दोस्त है इसलिए सब तेरी बात सुनते हैं और सुनेंगे। मैं तो काफ़ी मुसलमानों के साथ बैठता हूँ, उनसे पूछता हूँ, मैं कैसे कहूँ कि वो तो दगाबाज से मुझको दगा दे रहे हैं? मैं कहता हूँ कि अगर वो दगा देते हैं तो वो दगा उनका तो सगा हो ही नहीं सकता है, मुझको वो क्या हैरान करने वाले थे, मुझको नुकसान नहीं पहुँच सकता है, तो जैसे मुझको नहीं नुकसान पहुँच सकता है तो आपको भी नहीं। मुसलमानों के पास काफ़ी काफ़ी हथियार बढ़े हैं, थोड़ी हथियार तो आज उनके पास ले लिए, वो सब मैं कबूल करता हूँ, पड़े हैं, क्या करेंगे, मुझको मारेंगे, आपको मारेंगे, मार डालना, मारने दो, उसमें क्या पड़ा है, लेकिन हुकूमत कहाँ गई? मैं आपको कहता हूँ कि अगर हम अच्छे बन जाएं, शरीफ बन जाएं, तो हुकूमत को तो देखना ही है, दोनों हुकूमतों को, हुकूमतों को आपस आपस में लड़ने दो, हम आपस आपस में लड़े, हम तो आपस आपस में दोस्त ही रहें, दरकार न करें कि हमको मार डालेंगे, मार डालने वाले कोई पड़ा नहीं है जब तक ईश्वर हमारी रक्षा करता है तो इसलिए मैं कहूँगा कि वो दोनों हुकूमत तो मुझको आज बुरा लगा। कायदे आसम साहब ने कुछ बहस की है और कहा है कि हिंदुस्तान के यूनियन के जो लोग हैं उन्होंने आप लोगों को ताराज किए हैं, मुसलमानों को, इस वास्ते आप लोगों को यहाँ लाने की हम पैरवी कर रहे हैं पाकिस्तान में, और पीछे आपके लिए खाना भी तैयार करना चाहिए, आपको जमीन भी देना चाहिए। वो हम तो गरीब पड़े हैं, नहीं हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि जिसके पास पैसे पड़े हैं वो पैसे हमको भेजो, वो भले भेजे, उसमें उसको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन वो कहने के साथ वो क्यों नहीं कहते हैं कि पश्चिम पंजाब में जो मुसलमान है उन्होंने क्या किया, एक हिंदुस्तान को कहना कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को तबाह कर रहे हैं, दिल्ली में कहो किया, बिहार में किया तो बिहारियों ने कफारा किया, कबूल कर लिया कि हमने गुनाह किया है, वो वहाँ कलकत्ता में किया तो उसने कह लिया, मेरे पास आए जिन्होंने किया था उन्हें पश्चाताप किया कि हम कभी नहीं करेंगे, तो मैं कहता हूँ और वहाँ तो मुसलमान भी आए कि मुसलमानों भी ऐसा किया, वो तो शराफत है, वो नुकसान सब कर लेता है, दीवाना सब बन जाता है। लेकिन वो तो बड़े गवर्नर जनरल है पाकिस्तान के, मेरे तो दोस्त हैं, तो मैं तो दोस्ती दावे से भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह से हम आराम से चैन से नहीं बैठ सकते, तो आपको तो कह देना चाहिए कि हिंदुस्तान दीवाना बना, ऐसे ही पश्चिम के मुसलमान भी दीवाना बने, तो उन मुसलमानों को भी अच्छे बनना है, शरीफ बनना है, एक भी लड़की पंजाब की है जैसे सिख हो या तो हिंदू हो, उस लड़की को कोई मुसलमान ले नहीं सकता है, किसी को मार नहीं सकता है, किसी की जायदाद ले नहीं सकता है, ऐसा उनको कहना है, और न माने तो उसको मरना है, ऐसा जवाहरलाल को कहना है, सरदार को कहना, और न माने तो उनको मरना है, तब मैं समझूंगा वो मर जाएं, ऐसा करते करते, यूं नहीं कि कोई कॉलेरा हुआ या तो दर्द हुआ और दर्द से मरे और हम सब मरने वाले हैं, लेकिन इस तरह से लोगों को शांत करते करते वो मर जाएं, तब तो मैं समझूंगा कि हिंदुस्तान के लिए खैर है, तो मुझको सुबह है, मैं कबूल करना चाहता हूँ कि क्यों उन्होंने नहीं कहा कि पश्चिमी पंजाब में क्या हुआ, पश्चिमी पंजाब में बहुत बुरा किया है, इसका मैं गवाह हूँ, मैंने देख लिया है, मैं कैसे मेरी आंखों को बंद कर सकता हूँ, नहीं करता, मैं तो हिंदू जो गुनाह करते हैं उसको भी मैं छुपा नहीं सकता हूँ, मेरी आंख बंद नहीं कर सकता हूँ, इसी तरह से कोई मुसलमान गुनाह करे तो मैं नहीं छुपाऊंगा, मैं छुपाऊँ मेरी आँख को और मैं उसको न सुनाऊँ तो मैं कहूँगा कि मैं इस्लाम का बेवफा बनूँ, तो मैं तो इस्लाम का भी बेवफा नहीं बनूँगा, गुरु ग्रंथ साहिब का भी बेवफा नहीं बनूँगा, न मैं वेलाली का बेवफा बन सकता हूँ, मैं तो सबका वफादार ही रहना चाहता हूँ और वफादार मरना चाहता हूँ, एक बात मेरे पास रह जाती है कि एक आपके वहाँ एक छोटा सा अखबार निकलता है, मैंने तो परसों ही कल ही देखा, उसका नाम रिपब्लिक है और अंग्रेजी में निकलता है, मैं तो अंग्रेजी भूल जाना चाहता हूँ, अंग्रेजी में किसके लिए निकालते हैं, क्या दुनिया के लिए कि क्या उसके पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं, वो गुरुमुखी में निकालो, हिंदुस्तानी में निकालो, लिखो उसको देवनागरी में लिखो, उसको उर्दू लिपि में लिखो, वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन नहीं, वो तो अंग्रेजी में निकलता है, अंग्रेजी तो उसमें तो कैसी, हम तो अंग्रेजी कहाँ जानने वाले हैं, तो ऐसी ही बड्डी अंग्रेजी हो सकती है, उसमें हमला है असफ अली साहब पर। अभी असफ अली साहब तो आपके एम्बेसडर हैं अमेरिका में, उसमें ऐसा लिखा है, कुछ पूछना तो चाहिए जवाहरलाल जी को कि भाई इसी तरह से बुलाए, वो कहता है कि हमने सुना है, क्यों सुनी बात लिखी, जब यहाँ जवाहरलाल जी पढ़े हैं, असफ अली साहब भी यहाँ पढ़े हैं, यहाँ आ गए उसके बाद लिखते हैं कि वो आए हैं यहाँ तो उनको तो बुलाए, शायद सुना है ऐसा, और क्यों बुलाए हैं कि उन्होंने वो तो बेवफाई की हिंदुस्तान के लिए और पाकिस्तान की खुफिया तौर से मदद करने के लिए वो वहाँ बैठे। अभी देखिए असफ अली वो तो आपके वहाँ सदर रहा कांग्रेस में, आप लोगों के वोट से वो तो आए वो असेंबली में, वो असफ अली, और इतने वर्षों से कांग्रेस के खादिम रहे हैं। मान लिया कि उन्होंने बेवफाई की है तो उसको मार डालेंगे, लेकिन उस अखबार में ऐसी बात कैसे लिखी जा सकती है कि हमने सुना है कि ऐसा है और ऐसा है तो उसको वापस क्या बोलना चाहिए, उसको शूट करना चाहिए। मैं भी कबूल करूँगा कि ऐसा बेवफादार होता है, उसको वापस क्या बोलना चाहिए, शूट करो, लेकिन कोई किया भी नहीं है तो वैसे क्या। मैं तो जानता हूँ, 2 महीने से मैं जानता हूँ कि वो यहाँ आने की कोशिश कर रहा है। जवाहरलाल जी को का हुक्म तो लेना ही चाहिए उसको, जवाहरलाल जी वो हुक्म देते हैं कि यहाँ आ सकते हैं, तो यहाँ 4-5 दिन के लिए आया। वहाँ की जो बातें हैं वो उनको सुनाने के लिए, क्या करना चाहिए वो हुक्म देने के लिए आया। पाकिस्तान क्या उसके ख्वाब में भी नहीं पड़ा है, इसका तो मुझको कहना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसी बात होती है तो पीछे क्या कि असफ अली जो आपका दोस्त, आपके लिए पैरवी करने वाला जवाहरलाल जी का दोस्त, मौलाना साहेब का दोस्त, मौलाना साहेब आपके खादिम, इतने वर्षों तक आपके सदर रहे, तो क्या वो भी बेवफा, और उसका दोस्त से संबंध हकीम साहेब का दोस्त, वो डॉक्टर अंसारी का दोस्त, वो बेवफा बन सकता है हिंदुस्तान का? और अगर वो बेवफा बनता है तो उसकी सब खबर लेंगे, लेकिन वो ऐसी अफवाह क्यों पीछे जाए। लेकिन वो कि हाँ चलो किसी न किसी तरह से असफ अली का भी कुछ बुरा तो लिखे, वो कोई हमारे लिए अच्छा नहीं। वो रिपब्लिक चीज जो अपना को कहते हैं वो रिपब्लिक लिए अच्छा नहीं है। तो मुझको लगा कि एक तो कम से कम जिस आदमी की इस तरह से नटावट की जाती है और ऐसे पीछे कहकर और ऐसा हमारे दिलों में वो असर डालना कि वो मुसलमान सब बेवफा रहते हैं, नहीं है। मैं काफ़ी मुसलमानों के लिए कहने को तैयार हूँ कि अगर मैं वफा हूँ तो वो वफादार है, वो कोई गैर वफादार नहीं है। बाकी सबके लिए कौन कह सकता है, और ऐसे होंगे तो मैंने आपको सुना दिया है कि उसको ईश्वर पूछेगा, हमको पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। और पीछे वो अपने आप वो इस्लाम की घोर कबल करेंगी क्या, वो नहीं हो सकती है। और मैंने तो कल कह दिया है कि काफ़ी मुसलमानों ने इरादा किया, इसलिए मैंने कल कहा कि मुसलमानों का ये धर्म है कि जितना इल्ज़ाम रखा जाता है तो उसके लिए खास खास कह तो दें कि वो सब निकम्मी बात है, हम ऐसे हैं ही नहीं, हम तो हिंदुस्तान के वफादार हैं, रहेंगे हिंदुस्तान के वफादार होकर, मरेंगे हिंदुस्तान के लिए, सारी दुनिया के सामने लड़ेंगे, ये उनको करना है, तब तो वो सच्चे मुसलमान है, नहीं तो वो तो बुरे मुसलमान हो जाते हैं। मेरी ऐसी उम्मीद है कि ऐसे मुसलमान हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है नहीं, और न हो, और ऐसा न हो, ऐसा करने के लिए हमको अच्छा बनना है। अभी उठा लो।